Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
क्योंकि शब्दों के माध्यम से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पकड़ना समझाने के लिए फिर शब्दों का सहारा ही। तो जिसको माया कहा उसमें तीन बातें हैं मुख्य, अविद्या, काम और कर्म। ये तीन है। जिसको अविद्या हम कहते हैं उसमें संशय, विपर्य, विपरीत भावना, ये अविद्या का क्षेत्र। जिसको हम काम कहते हैं ये वाचिक, मानसिक, कायक, ये कर्म है। और जिसको हम कामना कहते हैं वो इच्छा, सप्रिहा और रति। ये सारे इसलिए कह रहा हूं, इसका संबंध इसी से ही है हमारे उपनिषद। मुख्य बात ये आएगी कि जिसको आप जागृत अवस्था कहते हो उसमें अविद्या, काम और कर्म तीनों में ही आप होंगे। जिसे आप स्वप्न कहते हैं उसमें अविद्या और कर्म रहेंगे, काम नहीं रहेगा। जिसे आप सुषुप्ति कहते हैं उसमें सिर्फ अविद्या रह जाएगी, बाकी दोनों खत्म हो जाए। देखेंगे आप उसमें यह कि अविद्या तीनों में ही है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति। अविद्या से कहीं भी बचे नहीं। ये बात इस उपनिषद में इसलिए कही गई क्योंकि ये बात वो सिद्ध करेंगे कि ये सब अवस्था बराबर ही है। जब तक आप जागते नहीं, जब तक आप सचमुच में ब्रह्म की ओर उन्मुख नहीं होते, आप ये सोचो कि जागृत अवस्था बहुत बड़ी है कि भाई हमेशा जागते रहो। ये सुनते हैं हम कि जागरूक हो जाओ, सावधान हो जाओ। वो कहते हैं किस से जागरूक होना है? इस बात को समझने के लिए आपको अविद्या से, काम से, कर्म से सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो हम जागते हुए भी सोए हुए। इसीलिए जिसको हमने अविद्या कहा, भक्ति शास्त्र वालों ने इसे मोह कह के ही छोड़ दिया कि मोह निशा सब सोवन हारा। देखे ही स्वपन अनेक प्रकार, तब ही जाने जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से, भोगों से जब विराग हुआ तो उसको जागना समझ। क्योंकि हमारे इस उपनिषद का तीसरा, चौथा, पांचवा जो श्लोक है, जो श्रुति है, उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का उल्लेख किया गया है और उसकी व्याख्या की गई है बहुत विस्तार से। शब्द तो थोड़े हैं लेकिन व्याख्या उसकी विस्तृत। उन सभी में देखो, ये जहां हम अविद्या कह लेते हैं, जैसे सत कहा तो सत के फिर आगे वो बन गई ब्रांच, ऐसे ही अविद्या में संदेह, विपर्य, विपरीत भावना, संशय भी इसको बोल लेते हैं। इन तीनों को मिलाकर अविद्या कह लेते हैं। और भगवान गीता में बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञ फिर भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, हो सकता है उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाए। अश्रद्धा वाले में श्रद्धा आसक्ति है, अज्ञच्च श्रद्धाधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञ और जिसमें श्रद्धा नहीं है वो तो हो सकता है कि कभी न कभी उनका भला हो जाए या कल्याण हो जाए, लेकिन संशय जहां आ गया वहां सुधार होना मुश्किल। और ये बात ठीक भी है, संशय का कोई इलाज नहीं, कितना भी आप कर लें। जब किसी को किसी बात का शक हो जाता है, आज ये शक की बीमारी में अधिक से अधिक लोग ग्रस्त हैं, जकड़े हुए, और कदम कदम पर इतनी परेशानियां हैं कि ऐसा समझ लो कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। संपन्नता की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर एक ही घर में केवल तीन लोग हैं, बाप माँ और बेटा, तो तीनों कहीं आपस में तालमेल कुछ नहीं, एक दूसरे पर संदेह कि ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा। वो कहता है इसको माँ सिखाती है मेरे खिलाफ, माँ कहती है इसका बाप मेरे खिलाफ इसको भड़काता है, बच्चा कहता है मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं सब समझता हूं अपने, वो दोनों को डांट के एक तरफ रखता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में रहते हुए जीवन जो जीना है उसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो ऋषियों के इस अनुभव का को सत्य मानकर इसको जीवन में नहीं अपनाते। ये जो हमारी उपनिषदें हैं, ये मनोविज्ञान की सबसे सटीक पुस्तकें हैं, और इसमें छोटे छोटे नुक्ते कह लो, छोटे छोटे सूत्र रूप में बातें कही गई हैं, जिनको हम अगर जीवन में अपना लें तो बहुत सारी झंझटों से बच जाते, क्योंकि ये सत्य का निरूपण करते हैं, और सत्य जहां भी होगा वहां चित्त और आनंद तो होता ही, और सत्य तो चलो प्रातिभाषिक सत्य भी हो वो दूसरे से फिर भी अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि इसमें क्या है जी, ये जो गीत गा रहे हैं सब झूठ है वो है, तो उसमें भी हम सोचते हैं कि ये झूठ फिर भी अच्छा है, बाकी जो झूठ बोल के किसी को नुकसान देना या वो करना उससे ये फिर भी अच्छा है, है तो ये भी झूठ के मुझे शाम आके तू मिल जा, मैं तेरे बिना बहुत उदास हूं, जब ऐसे ऐसे हम कहते हैं तो है तो ये भी झूठ ही, लेकिन ये झूठ फिर भी हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत सात्विकता की ओर ले जाए, बजाय इसके कि हम कोई झूठ बोल के दूसरे को धोखा दे रहे हों या अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें जब हम कहते हैं तो आके मुझे दिखलाई दे जा, सबका भला कर जा, ये कर जा, तो उसमें कम से कम किसी के नुकसान की बात नहीं। तो ये जो अविद्या की बात है, संशय की बात है, विपरीत भावना की बात है, भ्रम की बात है, देखो अविद्या का अर्थ होता है वस्तु को ना जानना, किसी चीज को ना जानने को अविद्या कहते हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये तो अविद्या हो। जो है उसको गलत जान लेना ये भ्रम है। रस्सी पड़ी हुई है, हम उसको नहीं जानते रस्सी को, तो ये अज्ञान है, अविद्या है, ठीक। लेकिन रस्सी को सांप मान ले ये भ्रम है। भ्रम में हम सब अलग अलग हैं, कोई उसको सांप मान लेगा, कोई उसको दूर से पड़ी हुई रस्सी को, कोई आदमी छड़ी भी मान सकता है कि लकड़ी की छड़ी पड़ी हुई है, तीसरा आदमी उसको पानी की लकीर भी मान सकता है कि पानी गिरा हुआ है, चौथा आदमी उसको भूछिद्र की दरार आई हुई है जमीन में, सीमेंट की दरार भी मान सकता है। तो भ्रांति में, भ्रम में हम अलग अलग हैं, किसी को कुछ नजर आएगा, 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 इसी को प्रमादोष कहते हैं। प्रमादोष, प्रमेय दोष, प्रमाता दोष, तीनों तरह के दोषों को ही अविद्या कहते हैं। हमारी बुद्धि में कोई नुक्स हो, हमारे अंतःकरण में कोई नुक्स हो, या जिस चीज को हम समझना चाहते हैं उस चीज में ही कोई नुक्स, जिस चीज को ही हम समझना चाहते हैं अगर वो ही कहीं खराब है तो उसको प्रमेय दोष कहते हैं। अगर हमारी ही समझ में नहीं आ रहा तो प्रमा दोष, और जिस वजह से वो समझ में नहीं, जिस चीज को हम जो भी समझ रहे हैं गलत, वो हमारे अंतःकरण का दोष। अंतःकरण का अर्थ होता है कि जो डरपोक आदमी है उसको सांप नजर आएगा रस्सी में, क्योंकि वो अंतःकरण से बचपन से ही डरपोक है, डरता है सब चीजों से, और जो डरपोक नहीं है उसको कुछ और पानी की लकीर भी नजर आ सकती है, दूसरा भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो उसकी बुद्धि का दोष हो गया कि ठीक से समझ नहीं रहा, और ठीक रोशनी हो जाने पर, लाइट हो जाने पर जो उसे समझ लेगा तो वो ठीक हो गया। लेकिन विपरीत भावना नाम का एक ऐसा दोष है कि लाइट हो जाने पर भी फिर भी यही समझते रहना कि नहीं यह है तो वही, ऐसे ही मुझे गलत समझा रहे। कितना भी किसी को समझा लो, कई इस तरह के होते हैं, आप जितना जितना समझाते जाओगे उतना उतना उसको ये लगता जाएगा कि ये मुझे झूठ बोल के फंसा रहा। साइकोलॉजी भी यही कहती है, मनोविज्ञान भी यही कहता है, जहां आप किसी को कसम आदि खाकर बार बार ये कहने की कोशिश करोगे कि मैं ठीक कह रहा हूं, उतना ही दूसरे को ये लगेगा कि ये झूठ बोल रहा। जितना हम कहेंगे कि नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो इस बात को समझ, तो वे समझ, मैं ऐसा क्यों करूंगा वैसा, उतना ही वो झूठ होगा, उतना ही वो गलत होगा। और विशेषकर भाव के बारे में तो ये बात निश्चित होती है, जहां भाव की दुनिया है, जहां पदार्थों की दुनिया है, वहां दूसरी बात, वहां तो आप दिखला दोगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां भाव का मतलब है प्यार और नफरत, अगर हमारे मन में नफरत है या प्यार है, कितना भी किसी को कहते रहो कि प्यार है, वो उसकी समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा कि ये ऊपर ऊपर से कह रहा है, तो इसके मन में द्वेष ही, तो वो समझेगा नहीं कभी भी। तो इसको विपरीत भावना कहते हैं। ये बुद्धि में एक ऐसा दोष बैठ जाता है कि उसको जरा समझा पाना मुश्किल हो जाता है। बाकी जितने भी इसमें अविद्या का मुख्य बात, अगर हम वेदांत की बात लें तो वेदांत वाले तो कहते हैं अविद्या का अर्थ इतना ही है कि अपने को ब्रह्म ना मानना, ना जानना, जो अपने को जीव मान रहा है, मनुष्य मान रहा है, यही अविद्या। वस्तुतः आप मनुष्य जीव नहीं हो, ब्रह्म ही हो, तो अपने असली स्वरूप को ना मानना ही अविद्या है। जो ही आप असली स्वरूप को स्वीकार कर लो, समझ लो, तो अविद्या से बाहर आ गए। तो जितने दुख हैं, जितनी भी जिसको हम माया कह रहे थे, ये अविद्या के समय की है, और जो ही ज्ञान हुआ ये सारा कुछ लोप हो जाता है। ये जैसे अंधेरे में से एकदम प्रकाश हुआ तो सारी चीजें स्पष्ट दिखलाई देने लग गई। तो ये अविद्या, काम और कर्म, ये माया का क्षेत्र है, और इनकी उत्पत्ति गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों में रहते हैं। उसी से ही जब ये पंचीकरण की प्रक्रिया आप देखते हैं तो ये पंचभूत बने, पंचभूतों से फिर हमारा शरीर बना, ज्ञान इंद्रियां बनी, कर्म इंद्रियां बनी, अंतःकरण बना। क्योंकि ये हमारी शरीर, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब प्रकृति के इन गुणों की ही देन है। इसलिए जहां कहीं भी ये होंगे, जहां कहीं ये शरीर होगा, इंद्रियां होंगी, अंतःकरण होगा, उससे जो भी हम काम करेंगे वो अविद्या में ही होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र ही अविद्या का है। तो ये अविद्या का क्षेत्र तो रहेगा ही, जो ब्रह्म है, जो सत्य चित आनंद, जो असली है, जिसकी ये शक्ति, अगर वो ध्यान में रह जाए कि असली वो है, ये उसकी शक्ति है, ये अध्यास है, वो अधिष्ठान, अधिष्ठान पर नजर जाते ही अध्यस्त खत्म हो जाता। खत्म होने का मतलब इसके दुख खत्म हो जाते। ये समझ में आते ही कि ये रस्सी है, सांप नहीं, वो रस्सी खत्म नहीं होती, लेकिन रस्सी से जो दुख हो रहे थे वो खत्म हो गए। जो सांप समझ के हमें परेशानी हो रही थी, जो उसे बचने के लिए दौड़ रहे थे या वो कर रहे थे, वो सारा कुछ खत्म हो गया, रस्सी खत्म नहीं होगी। इसलिए अविद्या कभी खत्म नहीं होती। अविद्या से जो दोष है पैदा हुए हुए, वो खत्म हो जाते। अर्थात दोष इसके ये है कि हम अस्थाई को स्थाई मान रहे, नाशवान को अविनाशी मान रहे, दुख रूप को सुख रूप मान रहे, अपवित्र को पवित्र मान रहे, वो है नहीं। तो जब नजर हमारी ब्रह्म पर चली जाती है, सच्चित आनंद पर चली जाती है, तो अविद्या, काम, कर्म ये रहते हुए भी इनके दोष नहीं रहते। जब इनके दोष नहीं रहते तो फिर उसको कहते हैं कि आप सोए हुए भी जाग रहे हो और जागते हुए भी सोने के बराबर। जागते हुए भी सोने के बराबर जब वेदांत वाले कहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जागते हुए भी बेहोश, उसका अर्थ ये है कि जागते हुए भी एकत्व की भाव के सब एक ही है। क्योंकि शास्त्र में नींद का मतलब है पृथकता का खत्म हो जाना। जो चीजें हमें अलग अलग नजर आ रही हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अनेकता खत्म हो जाती है, नींद में सब एक हो जाते। जो कुछ भी हो गया, क्योंकि वो अंधकार है, उसको घनीभूत एकता कह लेते हैं। समाधि में भी सब मिट जाते हैं, वहां प्रकाश है, तो प्रकाश में भी घनीभूत एकता है। तो नींद का या समाधि का अर्थ होता है जहां एकत्व हो, दूसरा नजर ना आए। नजर ना आए का मतलब है कि आंखों से तो नजर आएंगे, लेकिन मन के अंदर ये बात बन जाएगी कि ये मेरे से अलग नहीं, वही एक तत्व जिसमें मैं कल्पित हूं, उसी में ये भी कल्पित, किसी भी तरह से अलग नहीं है, और वो तत्व मैं ही हूं। ऐसा जिसको एहसास हो जाए वो तो समझ लो कि बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गया। तो जिसको ये एहसास नहीं हो जाता कि ये सारा मेरा ही सारा है, इतना भी हो जाए कि जिस तत्व में मैं कल्पित हूं उसी में ये बाकी सब भी कल्पित है, तो इसको भक्ति कहते हैं, परस्पर स्नेह कहते हैं, प्रेम कहते हैं। तो इस ढंग से भी हम थोड़ा परेशानियों से बच सकते हैं। इस ढंग से भी हम, क्योंकि नजर उस एक तत्व पर रहेगी जिसमें ये सब कल्पित, क्या कल्पित है, तत्व एक ही है, उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये कल्पित है। उसमें हमारा सोना उठना जागना स्वप्न देखना ये जिसमें कल्पित है उसको तत्व कहते हैं। वो ना सोता है ना जागता है ना उठता है, अर्थात तीनों ही अवस्थाओं में तत्व तो वैसे का वैसा ही रहेगा, आत्मा जीव का क्यों रहेगा। लेकिन आत्मा हमारे सोने को भी प्रकाशित करेगा, बतला देगा कि सोया था, बतलाएगा हमें अंतःकरण, सोएगा भी अंतःकरण। वृत्तियां सो जाती हैं, जब नहीं काम करेंगी तो रहते हुए भी अंतःकरण तो रहेगा ही लेकिन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से सुषुप्ति में जाकर कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अंतःकरण ये सो जाते, लेकिन आत्मा जिसमें ये सारा प्रपंच कल्पित है, जब हम समष्टि दृष्टि से कहेंगे तो उसे परमात्मा कह लेते हैं, व्यष्टि से व्यक्ति का इंडिविजुअल को लेकर बात करेंगे तो उसको हम आत्मा कह लेते हैं। जागृत के समय जो मेरी वृत्तियां काम करती हैं, स्वप्न में भी वही वृत्तियां काम करती हैं, काम वही है जो हम जागते हुए करते हैं, स्वप्न में भी वही करते हैं। खाना पीना घूमना उठना बैठना लड़ना झगड़ना रोना कुछ लेना देना खोना स्वप्न में भी होता है उसमें भी होता है। लेकिन जो स्वप्न का कर्ता जो स्वप्न में हमारा रूप है उसका नाम तेजस रख दिया गया और जागते हुए हम जो कुछ कर रहे हैं इसको विश्व कह दिया गया और जब सो जाते हैं तो उसको प्राज्ञ कह दिया गया। एक ही व्यक्ति के ये तीन नाम रख दिए गए, केवल असली तत्व तक पहुंचने के लिए और इनके रूप और स्वरूप को जानने के लिए। हमने थोड़ा थोड़ा इन श्लोकों को पढ़कर उनका जो अर्थ था वो भी किया। मुख्य बात अब केवल इतनी ही है कि जिस समय हम जाग रहे होते हैं उस समय भी हम असलियत से दूर हैं, उस समय भी हम तत्व से हटे हुए, उस समय भी हम वास्तविकता में नहीं पहुंचे हुए और उसका कारण हमारी कामनाएं। जागृत में हमारी कामनाएं हमें सत्य से अलग करती हैं, स्वप्न में हमारी वासनाएं हमें सत्य से अलग करती हैं और नींद में अज्ञान हमें सत्य से अलग करता है। तीनों ही स्थितियों में सत्य से हम अलग रहे। और जब सत्य को पहचान लेते हैं तो फिर तीनों स्थितियों में किसी में भी रहो दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, ना तो हमें कामनाएं परेशान करेंगी, ना हमें वासनाएं ईर्ष्या और द्वेष में फंसाएंगी और ना ही हमें अज्ञान नश्वर में अनश्वर का भ्रम होने देगा। और अगर हम क्योंकि ध्यान इसी बात का ही रखना है तत्व तक पहुंचने के लिए जो तत्व की व्याख्या की उन्होंने, जैसे इसकी सातवीं श्रुति में वो अपने देखा न अंतः प्रज्ञा न बाह्य प्रज्ञा वाले में, उसमें जाकर वो तत्व को समझा रहे। लेकिन तत्व को समझाने का अर्थ होता है कि कामनाएं वासनाएं अज्ञान ये तीनों खत्म हो गए, इन तीनों की समाप्ति। समाप्ति का मतलब इनकी सत्ता नहीं है। क्यों सत्ता नहीं है? क्योंकि कामनाएं स्वप्न के समय नहीं रहती, वासनाएं जागृत के समय नहीं रहती, अज्ञान तीनों अवस्थाओं में सुषुप्त रूप से बना रहता है और सुषुप्ति में वो पूर्ण उसको प्रज्ञान घन कह दिया गया। जो अज्ञान है वो घनीभूत हो जाता है सुषुप्ति में, इसलिए सारा कुछ एक ही एक में मिल गया, बीज अवस्था। बीज अवस्था का अर्थ होता है कि जैसे एक बीज हो छोटा सा पड़ा हुआ, बीज के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ, जब वो बीज अंकुरित होगा ये होगा तो सब चीजें बाहर निकल आए। अर्थात सुषुप्ति में आप बीज रूप में से हैं, स्वप्न भी वही है, कामनाएं भी वही है, अविद्या भी वही है, राग द्वेष सब कुछ उसी में है, लेकिन बीज रूप में जो ही हम जागेंगे तो जागते ही वो प्रस्फुटित हो जाए, फिर ताना बाना बुनना, फिर कामनाओं का आना, फिर इसका होना वो शुरू हो जाएगा, तो हम जागृत अवस्था में आ जाते। जागृत में भी सत्य से दूर रहे, स्वप्न में भी सत्य से दूर रहे और सुषुप्ति में भी सत्य से दूर रहे। सत्य से दूर क्योंकि तीनों अवस्थाओं में हम रहे तो फिर इनमें भेद कोई नहीं है, तीनों बराबर ही, ऐसा शास्त्र का कहना। फिर ये सोचना कि जागृत सुपीरियर है और सोना ये है कि जागते हुए हम बहुत कुछ कर लेंगे, शास्त्र कहता है जागते हुए कामनाओं में फंसोगे और बिगाड़ करोगे कुछ ना कुछ, उससे सो लेना अच्छा है, वो फिर भी किसी काम आएगा, क्योंकि उस समय हम तत्व के नजदीक होते, एकत्व के नजदीक होते हैं, अपने और पराये की भावना से मुक्त होते हैं, लाभ और हानि की भावना से मुक्त होते हैं, ये मुझे मिल जाए वो उसे मिल, इस कामों से दूर होते हैं। और वो सत्य के नजदीक है, उससे तो हो सकता है कभी सत्य के पास पहुंच जाए, लेकिन जागृत में कामनाओं में रहते हुए इस भागदौड़ में लगे हुए हम सत्य की ओर मुड़ जाएं, ये थोड़ा असंभव जैसा है। ओम।